उत्पत्ति एक अध्याय एक पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा तिमुथियो 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। आमीन। प्रिय दर्शकों, यह क्रूस के संदेश का 5वां सत्र है। पिछले दोनों सत्रों पर लगातार बातचीत करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर किस प्रकार का अस्तित्व है। आज मैं आपको परमेश्वर के चौथे पहलू के बारे में बताऊंगा, जो बाइबल का रचयिता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज के संदेश के द्वारा निश्चित तौर पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का वचन सत्य है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने विश्वास में परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे और अभ्यास करेंगे और जिन आशीषों की प्रतिज्ञा बाइबल में है उन्हें प्राप्त करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप चर्च जाते हैं तो प्रत्येक को बाइबल में से कुछ न कुछ प्राप्त होता है। बाइबल में उद्धार के मार्ग के बारे में साफ साफ लिखा गया है। वह हमें बताता है कि क्यों परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, वह कैसे मानव इतिहास की अगुवाई करता है और हमें मनुष्यों की खेती के आदि और अंत के विषय में बताता है। वह स्वर्ग और नर्क के बारे में, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में और मनुष्यों के कर्तव्यों के बारे में भी साफ साफ बताता है। जब आप इन बातों में विश्वास करते हैं और अभ्यास में लाते हैं, आप जीवन और उद्धार प्राप्त करेंगे। तब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की योग्यताएं प्राप्त करेंगे। इस संसार में अनगिनत पुस्तकें हैं, लेकिन केवल बाइबल ही मनुष्यों को उद्धार और जीवन दे सकती है। तो इस बाइबल को किसने लिखा? बाइबल को लिखने में कुल 1600 वर्ष लगे, 1500 वर्ष पुराने नियम को लिखने में और 100 वर्ष नए नियम को लिखने में। सो बाइबल पुस्तकों का संग्रह है जिसे 34 लोगों ने 1600 वर्षों में लिखा है। लेकिन संपूर्ण बाइबल का लेखक परमेश्वर है। जैसा पहले कहा गया, 34 लोग इसके लेखक थे, लेकिन वे इसके रचनाकार नहीं थे, वरन इन्होंने इसे किसी और के लिए लिखा। आइए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक माँ जो अपने बड़े बेटे के साथ रह रही है, वह अपने छोटे बेटे को चिट्ठी लिखना चाहती है जो अलग रहता है। चिट्ठी में जो कुछ लिखना है, माँ अपने बड़े बेटे को उन बातों को लिखने को कहती है। तो यह चिट्ठी किसकी होगी? क्या यह चिट्ठी बड़े बेटे की होगी क्योंकि उसने इसे लिखा है? नहीं, कभी नहीं। यद्यपि ये चिट्ठी बड़े बेटे के द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो उसमें लिखा गया है वह माँ की ओर से है। ठीक इसी तरह से बाइबल में जो लिखा है वह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने उन लोगों को जो उसकी नजर में उचित थे, उन्हें पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अंतर्गत वचन लिखने के लिए प्रेरित किया। इस विषय में 2 तिमुथियो 3:16 कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2 पत्रस 1:21 कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। यशायाह 34:16 कहता है, यहोवा की पुस्तक से खोज कर पढ़ो, इनमें से एक भी ना छूटेगा, क्योंकि अपने जोड़े से अलग ना रहने पाएगी, क्योंकि यह आदेश उसी के मुंह से निकला और उसकी आत्मा ने उनको एकत्र किया है। यद्यपि बाइबल को अनेकों लेखकों ने लिखा है, फिर भी पूरी बाइबल में कोई भी प्रतिकूलता नहीं पाई जाती है, बल्कि ऐसी अनुकूलता पाई जाती है जैसे इसे किसी एक ही जन ने लिखा हो। यह इसीलिए है क्योंकि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पवित्र आत्मा के कार्यों से लिखी गई है। क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, इसलिए जरूरी है कि आप भी इसका अनुवाद पवित्र आत्मा की प्रेरणा से करें। यदि आप मानवीय ज्ञान द्वारा इसका अनुवाद करेंगे तो यह गलत अनुवाद हो जाएगा। 2 पत्रस 3:16 कहता है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग अर्थात वे लोग विश्वास की चट्टान पर नहीं हैं, उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और अन्य बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका इस प्रकार से नाश हो जाता है। बाइबल जैसे है आप वैसे ही उस पर विश्वास कर सकते हैं, परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जो विपरीत तरीके से सिखाते हैं। परमेश्वर हमें प्रार्थना में पुकारने के लिए कहता है। नए व पुराने नियम में परमेश्वर के लोग प्रार्थना पुकार कर करते थे, यहाँ तक कि हमारा प्रभु भी तब तक दोहाई देता रहा जब तक कि उसका पसीना खून की बूंदे ना बन गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, यदि आप प्रार्थना में पुकारते हैं या अन्य भाषा में बोलते हैं तो यह गलत है, वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलते हैं। इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। यदि आप बाइबल का अनुवाद पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा नहीं करते बल्कि मनुष्यों की सोच के साथ करते हैं, तो जैसा परमेश्वर चाहता है तो फिर आप उससे हटकर समझ प्राप्त करेंगे। आप नाश में गिर जाएंगे। यदि आप बाइबल का अनुवाद पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ करते हैं तो आप ये भी एहसास कर पाएंगे कि इसके पद एक दूसरे से मेल खाते हैं। मान लीजिए कि मैं विश्वास विषय पर प्रचार कर रहा हूँ, तब पुराने और नए नियम में एक दूसरे से मेल खाने वाली आयतें एक साथ निकल कर आएंगी। मैं कितने घंटों तक विश्वास विषय पर संदेश दे सकता हूँ? मैं 10 घंटे यहाँ तक कि 50 घंटे तक भी प्रचार कर सकता हूँ। क्यों? यदि आप बाइबल के सभी पदों को मिलाना आरंभ करेंगे तो पूरी बात को समझाने के लिए ये पद एक दूसरे से मिलते ही चले जाएंगे। इसलिए केवल एक विषय विश्वास पर मैं आपको विश्वास के बारे में और उद्धार के विषय में भी सब कुछ बता सकता हूँ। इसलिए मैं 50 घंटों यहाँ तक कि 100 घंटों तक प्रचार कर सकता हूँ। यह पदों के एक दूसरे से जुड़े होने के कारण है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि इनमें से एक भी ना छूटने पाएगा, कोई अपने जोड़े से अलग ना रहने पाएगी। जैसे माला को बनाने के लिए एक एक दाने को पिरोना पड़ता है, वैसे ही प्रत्येक पद दूसरे पदों के साथ जुड़कर अनुकूल बनता है और इसके आत्मिक अर्थ को समझने के लिए इसे सिद्ध और पूरा बनाता है। आइए मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 2:21 पद कहता है, और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार प्राप्त करेगा। लेकिन केवल इस पद से हम उद्धार के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह नहीं समझ सकते। सो यदि आप कहने लगे कि आप तो केवल इस पद के अनुसार प्रभु का नाम लेंगे और आप उद्धार प्राप्त कर लेंगे, तो आप बाइबल को गलत समझेंगे। इस तरह से आप में गलत सूचनाएं भर जाएगी। और जैसा मत्ती 7:21 पद में लिखा है, प्रत्येक जो मुझे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। आप केवल हे प्रभु कहकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है जो स्वर्ग में है वह प्रवेश करेगा। हम केवल प्रभु का नाम पुकारने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने की स्थिति को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए रोमियो 10:10 पद में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यह बताता है कि विश्वास क्या है। हमें हृदय में विश्वास करना है। हमें केवल वचन को सुनना और एक ज्ञान की तरह नहीं रखना है, वरन हमें हृदय में विश्वास करना है। सो जब हम हृदय में विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहरेंगे। विश्वास एक ज्ञान के रूप में और विश्वास हृदय में, ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग है। यदि आप हृदय में विश्वास करते हैं तो आप उसे कार्य में भी करेंगे। आप ज्योति के वचन के द्वारा चलने लगेंगे। आपके कार्यों द्वारा आपका विश्वास सिद्ध हो जाएगा। आपका हृदय आत्मा के साथ विकसित होगा। आप सब प्रकार की बुराई को उतार फेंकेंगे और पवित्र बन जाएंगे। परमेश्वर का सच्चा जन बन जाएंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। यही धर्मी होना है। क्योंकि आप सब बुराइयों को त्याग देते हैं और पवित्र बन जाते हैं तो आप धर्मी बन जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो कोई हृदय में इस प्रकार से विश्वास करते हैं वे धर्मी ठहराए जाएंगे। और जब वे अपने होठों से अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरा उद्धार करता है, तो वे उद्धार प्राप्त करेंगे। अर्थात वे जो हृदय में विश्वास करके धर्मी ठहराए गए हैं, वे अपने होठों से अंगीकार करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे। आप केवल अपने सिर में ज्ञान के द्वारा और यही कहने के द्वारा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर विश्वास करने का अर्थ क्या है? याकूब 2:14 पद कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई ये कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म ना करें, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? वे कहते हैं उनके पास विश्वास है, लेकिन वे परमेश्वर के वचनानुसार नहीं चलते। वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वे ज्योति में नहीं चलते। तो क्या इस प्रकार का विश्वास उन्हें बचाएगा? हमारा प्रभु कहता है नहीं। जो लोग अपने हृदय में विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं वे अपने कामों के द्वारा प्रमाणित करते हैं। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आपके पापों की क्षमा के लिए यीशु ने अपनी जान दे दी, तो जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आपके कार्य भी प्रकट होंगे। क्योंकि आप प्रभु और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जिसने अपनी जान आपके लिए दी है, तो आप परमेश्वर के हृदय को चोट नहीं पहुंचाना चाहेंगे। तो फिर आप स्वाभाविक रूप से पापों को दूर हटाना शुरू कर देंगे। और ये भी, यदि आप वास्तव में प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप अपने भाइयों से अपने समान प्रेम रखेंगे। आप घृणा, ईर्ष्या, दोष लगाना, निंदा नहीं करेंगे या अपने लाभ को नहीं ढूंढेंगे, लेकिन आप सेवा, त्याग और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए अपने कामों में विश्वास के प्रमाण दिखाएंगे। लेकिन कार्य केवल बाहरी दिखावे के रूप में नहीं होने चाहिए। रोमियो 3:28 पद कहता है, इसलिए हम इस परिमाण पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं वरन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। चाहे कितना भी आप सत्य पर क्यों न चले, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ नहीं करते तो केवल कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। आपका हृदय पवित्र बन जाना चाहिए क्योंकि आप प्रभु में विश्वास करते हैं और आपके कार्य आपके हृदय की पवित्रता से सिद्ध कार्यों की तरह प्रकट होने चाहिए। इसलिए हृदय में विश्वास करने का अर्थ है अपने हृदय को ऐसा पवित्र करना जिससे पवित्र कार्य प्रकट होते हैं, जिसका अर्थ है अपने हृदय का खतना करना। इसलिए बाइबल हमें हमारे हृदय के खतने के विषय पर बताती है, अपने हृदय की खाल को उतार फेंके। जब मनुष्य इस तरीके से अपने विश्वास करके हृदय का खतना करता है और होठों से प्रभु के नाम का अंगीकार करता है तो वह उद्धार प्राप्त करेगा। यदि आप इन आयतों के जोड़ों या इनके पूरक को नहीं जानते तो हो सकता है आप सत्य को गलत समझ बैठेंगे, यह सोचकर कि मैं बच जाऊंगा यदि मैं केवल यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लूं, या मैं तब भी बच जाऊंगा जब सिर्फ अपने हृदय में विश्वास कर लूं, भले ही मैं अपने पापों में जीवन क्यों न व्यतीत करूं। हालांकि यदि आप अपने हृदय में विश्वास करेंगे तो आप पाप नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है लोग कहें कि वे अपने हृदय में विश्वास करते हैं जबकि वे केवल अपने ज्ञान से विश्वास करते हैं क्योंकि वे सत्य को नहीं जानते। यदि विश्वास कार्य में प्रकट नहीं है तो यह हृदय में विश्वास करना नहीं कहलाएगा, यह तो केवल हमारे सिर में ज्ञान है। इसलिए इस मामले में तो हम लगातार पाप करते रहेंगे और उसका नतीजा आप जीवन प्राप्त नहीं करेंगे लेकिन नाश की ओर चले जाएंगे। इसी प्रकार से बाइबल के पदों में परमेश्वर की योजना को सही सही जानने के लिए उससे जुड़े हुए पदों को जानना इस तरह से आपके लिए जरूरी है, तभी आप इसके उचित आत्मिक अर्थ को समझ पाएंगे। प्रिय श्रोताओं, बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसमें सभी वचन सत्य है। इतिहास को देखने के द्वारा भी इस सत्य को हम साबित कर सकते हैं। पुराने नियम में आप देख सकते हैं कि इसराइल का इतिहास, ऐतिहासिक घटनाएं और लोग, स्थान और उनके रिवाज वास्तविक है। और जैसा पिछली बार भी बताया था मैंने कि बाइबल में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं और उनमें से प्रत्येक पूरी हो रही है और पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए लूका अध्याय 19:43-44 पद कहता है, क्योंकि तुझ पर वे दिन आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे सामने मोर्चा बांधेंगे और तुझे चारों ओर से घेर दबाएंगे, तब वे तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाकर चौरस कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जिससे तुझ पर कृपा की गई न पहचाना। ये यीशु के द्वारा यरूशलेम के नष्ट किए जाने की भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी के 40 वर्ष बाद यरूशलेम को 70 एडी के आसपास रोमी साम्राज्य के जनरल टाइटस द्वारा यरूशलेम को नष्ट किया गया। रोम सेना ने शहर की दीवार को चारों ओर से घेर लिया। नगर को जीत लेने के बाद उन्होंने निर्दयता से बच्चों को जान से मार डाला, सारे भवनों को नष्ट कर दिया, पत्थर पर पत्थर भी नहीं छोड़ा। इसके अतिरिक्त अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की गई है और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यीशु के बारे में है, उद्धार के मार्ग को पूरा करने के लिए, जो कि बाइबल का मुख्य विषय है। उद्धारकर्ता को मानव जाति को, जो सब पापी थे, बचाने के लिए आना था। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में कई स्थानों पर विस्तार से यीशु के जन्म, सेवा, दुख और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणियां दी, जिसे मसीहा बनना था। और जब समय आ गया, जैसा परमेश्वर ने वादा किया था, उसने यीशु को इस धरती पर भेजा। नए नियम में यीशु का पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा होने के विस्तार पूर्वक वर्णन है। आइए उनमें से कुछ पर पुनर्विचार करें। पहली भविष्यवाणी यीशु के जन्म के बारे में है। उत्पत्ति 3:15 पद में परमेश्वर हमें बताता है कि उद्धारकर्ता इज़राइली लोगों में से आएगा। जब उसने सांप को श्राप दिया तो उसने कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर स्त्री आत्मिक रूप से इज़राइल को दर्शाती है। ये तो साफ सी बात है कि पुरुष स्त्री से पैदा होता है, लेकिन क्या कारण है कि परमेश्वर तो भी कहता है कि ऐसा होगा? क्योंकि इसमें आत्मिक अर्थ है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 12:5 पद में लिखा है, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे के दंड से सब जातियों पर शासन करेगा। उस स्त्री का वह बच्चा परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। ये यीशु को प्रमाणित करता है जो एक स्त्री द्वारा आया, जिसका अर्थ इसराइल के लोग। यशायाह 7:14 पद कहता है, इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक जन्म देगा, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। मीका 5:2 पद कहता है, हे बेतलहम एप्राता, यदि भी तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, बेतलहम यरूशलेम के नजदीक बसा है जो एक छोटा सा नगर है, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइल में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया। है, अर्थात वह परमेश्वर से जन्मा था। जैसी भविष्यवाणी की गई ठीक वैसे ही यीशु पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से बैतलहम की सराय में चरनी में पैदा हुए। यीशु के पैदा होने के बाद राजा हेरोदेस ने यीशु को मारने की कोशिश की और आज्ञा दी कि दो दो साल के नीचे के लड़कों को मार दिया जाए, लेकिन उस समय परमेश्वर यूसुफ को स्वप्न दिखाकर यीशु को मिस्र ले आया। राजा हेरोदेस के मर जाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक और स्वप्न द्वारा वापस इसराइल बुला लिया। पुराने नियम में होशे 11 अध्याय 1 पद में भविष्यवाणी करता है, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। सो यदि आप मिस्र जाते हैं तो वहाँ पर वे स्थान है जहाँ यीशु ने शरण ली थी और वहाँ बड़ा हुआ। वहाँ रिफ्यूज के नाम से एक चर्च भी है। यीशु कुछ समय के लिए वहाँ था और परमेश्वर के स्वर्गदूत के स्वप्न द्वारा वह वापस इसराइल आ गया था। बाद में वह नासरत चला गया था और वहाँ बड़ा हुआ। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया, वह गधे पर सवार हुआ, जैसा जकर्याह 9 अध्याय 9 पद में भविष्यवाणी की गई थी कि हे सियोन की पुत्री अति आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है, वह नम्र और गधे पर अर्थात गधे के बच्चे वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है। और साथ ही भजन संहिता 41 अध्याय 9 पद भी कहता है, मेरे परम मित्र ने भी जिस पर मैंने भरोसा रखा था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यहूदा इस्करियोती जो परमेश्वर के वचन की रोटी बिल्कुल नजदीक रहकर प्राप्त करता था, उसने विश्वासघात किया और यीशु को बेच दिया। यहूदा इस्करियोती जिसके पास रुपयों की थैली रहती थी, उसने यीशु को बेच दिया। इसलिए बाइबल उसे ऐसा बताती है कि मेरे परम मित्र ने भी जिस पर मैंने भरोसा रखा था, जो मेरी रोटी खाता था। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि मेरा चेला, लेकिन मेरा मित्र। इसलिए जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु को बेचा, उसने यीशु को एक चिन्ह के रूप में चूमा। उस समय यीशु ने मेरा चेला नहीं कहा, बल्कि मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर, जैसा जकर्याह 11 अध्याय 12 पद में कहा गया है, यदि यह तुझे अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। अतः उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए चांदी के 30 सिक्के तौल दिए। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों में बेच डाला, जैसे कि पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी। उसने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। इसके अलावा और भी कई स्थानों में भजन संहिता जकर्याह में पूरी तरह भविष्यवाणी की गई है कि कैसे यीशु दुख उठाएगा, किस प्रकार से कब्र में दफनाया जाएगा, कैसे वह जी उठेगा, मारा जाएगा और कैसे वह ऊपर उठाया जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सी भविष्यवाणियां यीशु के बारे में जो पुराने नियम में थी, नए नियम में एक एक करके पूरी हुई। न केवल बाइबल लेकिन इतिहास भी यीशु को प्रमाणित करता है। अर्थात हम कहते हैं ये साल AD 2017 है, जिसका आरंभ यीशु के जन्म के समय से हुआ था। यदि हम सन 2017 कहते हैं, इसका अर्थ है 2017 साल बीत चुके हैं, जब से यीशु ने हमें बचाने के लिए इस धरती पर जन्म लिया। संवत AD एनो डोमिनाए यीशु के जन्म लेने के समय से ही हमारे पास है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 6 पद कहता है कि 500 लोग जी उठे प्रभु के गवाह थे। यह कहता है कि उसके पश्चात वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश अब तक जीवित है। इसका क्या अर्थ है? जब प्रेरित पौलुस बाइबल की इस किताब को लिख रहा था, 500 में से आधे से ज्यादा लोग यीशु के ऊपर उठाए जाने के गवाह थे, वे जीवित थे और उनमें से कुछ सो गए थे। हम सो गए विश्वासियों के शरीरों के बारे में कहते हैं जो मर गए हैं और स्वर्ग चले गए, सो उनमें से कुछ सो गए थे। उदाहरण के लिए याकूब, यीशु का एक चेला जो शहीद हो गया था, इस प्रकार से कुछ सो गए थे। इन गवाहों के द्वारा प्रभु के पुनरुत्थान को पूरे जगत में बताया जा रहा था। आज के दिन तक ये सत्य है कि प्रभु के बारे में बाइबल में कहे गए सब वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन पूरे संसार में फैल रहा है। और ये भी जो इन बातों को सुनते और विश्वास करते हैं, वे भी परमेश्वर से मिल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जो कि बाइबल का लेखक है। जब वे परमेश्वर के द्वारा दिए गए वायदों के वचन पर विश्वास करते हैं और अमल करते हैं जो बाइबल में है, तब वे हमारे परमेश्वर के कार्यों का अनुभव कर सकते हैं, जो अपने वायदों को पूरा करता है और अपने वचनों को नहीं टालता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, बाइबल प्रभु के आने से पहले अंतिम दिनों के दौरान संसार की स्थिति चिन्हों के बारे में भविष्यवाणी करती है। ये हमारे भविष्य के बारे में, घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करती है, जैसे कि महाक्लेश काल के 7 वर्ष, तीसरा विश्व युद्ध, 1000 वर्ष का समय, न्याय का दिन, स्वर्ग और नरक। बाइबल हमें यह पूरी तरह से बताती है कि कैसे हम जो इतिहास के इस समय में जी रहे हैं, हैं, उद्धार और आशीषें प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम स्वर्गीय राज्य में जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यद्यपि वे परमेश्वर पर अपने विश्वास का दावा करते हैं, फिर भी वे विश्वास नहीं करते कि बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन है। कुछ दूसरे और लोग हैं जो कहते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन पूरी तरह से बाइबल के वचनों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए जब बाइबल उनके सोच या उनके लाभ से सहमत नहीं होती तो वे उसके अनुसार नहीं चलते। लेकिन बाइबल निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन है जो कि परमेश्वर के द्वारा पूरी तरह से स्थिर है। इसलिए उनके लिए जो बाइबल पर विश्वास करते हैं और अमल करते हैं, परमेश्वर अपने वायदों के अनुसार उन्हें आशीष देता है। उदाहरण के लिए मरकुस 9 अध्याय 23 पद कहता है, यदि तू कर सकता है। यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, विश्वासियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरकुस 16 अध्याय 17 से 18 पद कहता है, और विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह दिखाई देगी, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगी, नई नई भाषाएं बोलेगी, वे सांपों को उठा लेगी, और यदि वे प्राण नाशक विष भी पी जाएं, इससे उनकी हानि ना हो, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जो विश्वास कर उनके लिए सब कुछ संभव है और ये उनके चिन्ह होंगे। बाइबल में आप नए या पुराने नियमों में परमेश्वर के लोगों को पाएंगे जिनकी मृत्यु बीमारी से नहीं हुई। बाइबल कहती है, मूसा की आंखें 120 की आयु में भी कमजोर नहीं पड़ी थी, वह स्वस्थ था और परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर रहा था, और परमेश्वर ने उसे बुला लिया। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे। हमारे विश्वासी के पास पक्का विश्वास है, इसलिए ये चिन्ह आप में दिखाई देते हैं। जब हमारे पास्टर्स और कार्यकर्ता बीमारों के लिए अपने हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, वे चंगे हो जाते हैं। यहाँ तक कि समय और स्थान की दूरी को पार करते हुए खतरनाक बीमारियां भी चंगी हो जाती है। रुमाल की प्रार्थना द्वारा ये चिन्ह पूरे विश्व भर में होते हैं। क्यों? यदि आप बाइबल में विश्वास करते हैं तो ये चिन्ह होंगे। ये चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते हैं क्योंकि आपके विश्वास में समस्या है। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो चिन्ह जरूर प्रकट होंगे, जैसा कि बाइबल में लिखा गया है, आप बीमारियों को चंगा करोगे। क्या ये सच नहीं है? इसलिए इब्रानियों 10 अध्याय में हमें शुद्ध हृदय और सिद्ध विश्वास करने के लिए कहता है। यदि आप शुद्ध हृदय और सिद्ध विश्वास पाने के लिए अपने हृदय का खतना करते हैं, उनके द्वारा ये चिन्ह प्रकट होगे। ये चिन्ह जरूर होगे जो विश्वास करेंगे, और आप गवाह होगे। ये चिन्ह मानवीय सदस्यों के द्वारा होते हैं। जैसा कहा गया है, सब कुछ उनके लिए संभव है जिनके पास सिद्ध विश्वास है। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद कहता है, और उसने कहा, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की वाणी ध्यान पूर्वक सुने और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है उन्हें करे, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए और मेरी सब विधियों का पालन करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। परमेश्वर हमारा पिता है, वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ तक कि यदि हमारे पास बीमारी भी हो, वह हमें चंगा करता है, परंतु क्यों वह हमें कोई बीमारी देगा? इसलिए हमें परमेश्वर को जानना है और उसमें उचित तरीके से विश्वास करना है। जैसा कहा गया है कि यदि तुम पाप से दूर रहोगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, कोई भी बीमारी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। यदि आप बीमारी में हैं, तो आप जानते हैं क्या कारण है। आप जानते हैं कि आपने परमेश्वर की कौन सी आज्ञा तोड़ी है, किस प्रकार के शरीर के कार्य आपने किए हैं। उनका प्राण समृद्ध होना चाहिए, उन्हें अपने आप को प्रभु की दुल्हन के तौर पर तैयार करना चाहिए, बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों में जाना चाहिए, लेकिन बजाय इसके वे नरक के मार्ग की ओर जा रहे हैं। वे परमेश्वर को कितना क्रोधित कर रहे हैं। उन्हें अपने हृदय को चीरना चाहिए, निरंतर आंसू के साथ पश्चाताप करना चाहिए। आपको किसी चाकू या किसी चीज से इसे नहीं चीरना है, वरन उन्हें अपने हृदय को चीरना चाहिए, पूरी तरह से पश्चाताप करना चाहिए। और जब आप पूरी तरह से पश्चाताप करते हैं, उसके बाद आकर आपको प्रार्थनाओं को ग्रहण करना चाहिए, तो प्रभु आपको तुरंत चंगा करेगा। अगर आपने अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप किया है, तो एक ही प्रार्थना से आप चंगे हो जाएंगे। लेकिन पूरी तरह से पश्चाताप किए बिना यदि आप केवल लिखते या केवल होठों से पश्चाताप करते हैं, तो आप चंगे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपने पूरी तरह पश्चाताप नहीं किया। यदि आप चंगे भी हुए हैं, तब भी आप पूरी तरह चंगे नहीं होंगे। परमेश्वर आपको उतना ही चंगा करेगा जितना आपने पश्चाताप किया है। लेकिन यदि आप अपने विश्वास के ठंडा पड़ जाने के लिए, पहले प्रेम के ठंडे पड़ जाने के लिए, गुनगुने मसीह जीवन के लिए, परमेश्वर के सामने वफादार ना होने के लिए, हृदय से पूरी तरह से पश्चाताप करें और तब प्रार्थना प्राप्त करने के लिए आए, तब आप केवल एक ही प्रार्थना से चंगे हो जाएंगे। हमारे सदस्य हमेशा देखते, सुनते और समझते हैं, ये परमेश्वर के सभी वचन सत्य है। आइए मैं इस संदेश का निष्कर्ष आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय दर्शकों, नीति वचन 8 अध्याय 17 पद कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, जो मुझे यत्न से ढूंढेंगे वे मुझे पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं, परमेश्वर कहाँ है? यदि कहीं है तो मुझे उनसे मिलाइए। यहाँ तक कि वे बिना ढूंढे परमेश्वर से मिलने की बात करते हैं। वे जबकि परमेश्वर को प्रेम भी नहीं करते। परमेश्वर आपको प्रेम करेगा जब आप उसे प्रेम करेंगे। परमेश्वर आपको मिलेगा जब आप परिश्रम पूर्वक उसे ढूंढेंगे। इसलिए ऐसी बातों को कहना परमेश्वर को ढूंढे बिना मूर्खता है। यदि आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो हम वो करना चाहेंगे जो उसे पसंद है। परमेश्वर को प्रेम करना और उसको ढूंढने का माध्यम बाइबल में विश्वास करना है और उसका पालन करना है। तब परमेश्वर आपको प्रेम करेगा। वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपसे ये कहते हुए मिलेगा, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने तेरी विनती को सुना है। मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चय ही अपने हृदय से परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और उसकी आज्ञाओं पर पूरी तरह से चलने की कोशिश करेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि जो ऐसा कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें प्रेम करे, मिले, आशीष दे और नए यरूशलेम में अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जाएं। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखे जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियाँ, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाए, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करे और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करे। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभाव को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारे, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।